संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में एक सौ चालीसवीं गाथा का टीका को आपसे पढ़ने के लिए कहा था। पढ़ी होगी आप लोगों ने, ऐसा मान करके अब आगे चले कि पढ़े फिर एक बार है? मतलब उसमें बात तो कुछ ज्यादा नहीं है, वही है, लेकिन उसे तर्क और युक्ति से उनने सिद्ध किया है, तो वो भी हमारे कम से कम विद्वानों के ख्याल में तो वो बात रहनी चाहिए। साधारण जनता के ख्याल में ना भी रहे तो चलता है। देखो पेज नंबर 291 एक बार अपन फिर पढ़ते हैं। ये जो 90 से नीचे की दो लाइन है, एक परमाणु से व्याप्त आकाश का अंश एक आकाश प्रदेश है। उसी बात को रिपीट किया है कि एक परमाणु जितनी जगह घेरे उसको एक आकाश प्रदेश कहते हैं, और एक आकाश प्रदेश पांच द्रव्यों के प्रदेशों परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं पुद्गल परमाणु स्कंदों को अवकाश देने में समर्थ है। ये भी अपन सब जानते हैं कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं और उनमें अनंत पुद्गल के परमाणु और बहुत द्रव्य सब द्रव्य उसमें रहते हैं। यहां तो ये कह रहे कि एक प्रदेश में वो सब रहें ऐसी सामर्थ्य है। अब बस ये गले उतरने में अब वो कहते हैं कि यदि ऐसा है तो उस प्रदेश के इतने अंश मानना चाहिए थे जितनी चीजें उसमें रह ली हैं। हरेक को अपना अपना स्थान मिले, कहते हरेक को स्थान मिल रहा है लेकिन वो स्थान है किसी का नहीं, क्योंकि दूसरे को आने से वो वहां रोक नहीं सकता। लोक में तो अपन सब जगह जाते हैं ना, लेकिन अपन एक छोटे से एरिए को अपना मानते हैं, अपना घर, अपना कमरा, अपना पलंग, और अपन ऐसा मानते हैं कि एक कोई इसमें दूसरा आएगा तो मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। माने उस पर थोड़ा हम अपना अधिकार मानते हैं, तभी तो हम उसे अपना कहते हैं। आपने जो लाखों रुपया देकर वो जो एक कमरा खरीदा है उसमें क्या खरीदा आपने? यही तो खरीदा है कि दूसरे लोग उसमें आपकी मर्जी के बिना नहीं आ सकते, इतनी सी बात है। बाकी तो सब अभी दूसरे लोग नहीं आ सकते ये बात भी सत्य है क्या? दूसरे मनुष्य मक्खी मच्छर चूहा बिल्ली ये तो सब कितने कितने उसमें रहते ही हैं पहले से ही, और चाहे जब आराम से आते हैं जाते हैं सब प्रवेश करते, तो ऐसे ही ये बाकी के सब द्रव्य जब निरंतर ही प्रवेश कर रहे हैं तो वो किसी का नहीं हुआ ना, सबका है, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। मतलब उसको ये है कि वो भी आए तो उसे भी कोई नहीं रोकेगा, इतना ही उसकी बात है। आकाश एक अखंड द्रव्य है फिर भी उसमें अंश कल्पना होती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। ये असलियत में ये गाथा में ये समझाना है कि एक अखंड वस्तु के अंदर भी अंश कल्पना होती है, तो उन्हें हम खंड क्यों नहीं माने? जैसे दो जीव हैं तो दो स्वतंत्र हैं ना, दो पुद्गल के परमाणु हैं तो दो स्वतंत्र हैं ना, ऐसे वे भी क्यों नहीं है? लेकिन वो अंश हैं क्योंकि वो वास्तव में टूट नहीं सकते। दो जीव एक स्वर्ग चला जाए एक नरक चला जाए, लेकिन वो जो प्रदेश हैं किसी भी एक एक जीव के जो प्रदेश हैं असंख्य, तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश नरक चले जाए कुछ प्रदेश स्वर्ग चले जाए। और तो जब वो मर के जहां जाएगा वो सारे प्रदेश एक निश्चित काल में एक जगह ही जो उनका देह जिसे अपन कहेंगे उसमें ही उन्हें स्थित होना होगा। इसलिए वे दूसरे जीव के प्रदेश नहीं आएंगे और अपने असंख्य प्रदेश आएंगे। तो अपने और अपन में और अपने प्रदेशों में ये अंश कल्पना है और दूसरा द्रव्य अपन से पृथक है। जो अपने आपने नए पढ़े हैं तो नयों में जो अतद्भाव और अत्यंताभाव का फर्क है वो ही फर्क इसमें है कि ये आकाश के जो हमने अनंत प्रदेश कहे हैं तो आकाश के दो टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन अंश कल्पना अनंत तक की हो सकती। तो अब अंश कल्पना का आधार क्या है? तो उनने सबसे छोटा अंश एक प्रदेश को कहा। जो कोई नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा आप लोगों ने दसवीं क्लास तक, तो उसमें रहता राज्य किसे कहते हैं। तो कहते जिसका एक सुनिश्चित भूभाग हो उसे राज्य कहते हैं। जब तक भूभाग उसके हाथ में नहीं हो बिल्कुल, चाहे वो एक ही गांव हो, तो यदि वो पूरा उसका मालिक है तो वो एक गांव का राजा अपने को कह सकता है। लेकिन होना तो चाहिए। एक जगजीत सिंह चौहान करके सिख था जो इंग्लैंड में रहता था, तो वो वहां कहता था कि जो हिंदुस्तान में जो पंजाब है ना, तो मैं पंजाब का प्रधानमंत्री हूं। तो पंजाब तो उसके कब्जे में नहीं था, हिंदुस्तान के कब्जे में था। तो हिंदुस्तान में उससे पूछे कहीं तेरा कोई भूभाग है कि कितने हिस्से का तुम मालिक है, कितने हिस्से पर तेरी तुम चलेगी? तो वो भूभाग कोई नहीं है। तो कहते कि भाई तुम वो हम देश नहीं मान सके। तुम अब देश नहीं मानते तो उसका प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है ना? तो ये सही हर अंतिम की जो गाथाएं हैं, अंतिम की माने 43 44 में जो गाथा है इसी में अभी अपन पढ़ेंगे 143 से 44, उसमें इस बात पर खूब मेहनत की है। पहले तो कहते जाए कि काल नास्ति काय है, उसके अप्रदेशी है, उसके कोई प्रदेश नहीं है। अब कहते आए तो खूब सिद्ध किया, तो अपन ने मान ही लिया। अपन तो श्रद्धा से भी मान लेते हैं, तर्क और युक्ति से भी मान लिया, तो इसने बिल्कुल ही मान लिया। तो अब ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई बिना प्रदेश का तो कोई वस्तु ही नहीं होती, तो फिर काल द्रव्य कोई वस्तु नहीं रहेगी, इसलिए वो एक प्रदेश ही है। तो बार बार कहते हैं जब एक प्रदेश ही है तो अप्रदेश ही क्यों कहा? अब व्यर्थ में ये तुमने पत्थर फेंक के तो हमें भ्रम पैदा कर दिया। तो वो कहते हैं बहु प्रदेशत्व के निषेध के लिए हमने अप्रदेश ही कहा। हमने ये नहीं समझा कि तुम एक प्रदेश भी नहीं मानोगे, ना बहु प्रदेश के निषेधत्व के लिए। तो तुम कहते बहु प्रदेश का निषेधत्व तुम एक प्रदेश ही कह के कर सकते थे। लोक में ऐसा है कि एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहते हैं। जैसे मैं आप तुमसे पूछूं कि तुम कितने भाई हो, तो जो अकेला होता है ना तो वो कहता हमारे कोई भाई नहीं है, हम भाई माई नहीं है, मतलब ऐसा कहता नहीं है। और उसी को कहता मैं अकेला एक एक भाई हूं। एक भाई भी हम कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा लोग में चलता है कि मैं अकेले भाई को मेरा कोई भाई बहन नहीं है, अकेली संतान ऐसा बोलती है। तो ऐसे काल द्रव्य के साथ में हुआ। दिक्कत क्या हुई कि हमने उसके अस्थि कायत्व का निषेध किया। अस्थि काय माने बहुप्रदेशी पना, तो इसने उसका अस्तित्व का ही निषेध समझ लिया। तो वो उन गाथाओं में फिर ये अस्तित्व को सिद्ध किया कि भाई वो है। तो जब इनने कहा कि हम एक प्रदेश भी नहीं मानेंगे तो फिर उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। तो अस्ति कायपने का निषेध करना था तो हमने अस्थिपने का भी निषेध साथ में कर दिया, क्योंकि उसे कहा कि अस्थि काय और नास्ति काय, वो अस्थि काय नहीं है। मैंने कहना था अकेला काय नहीं है, तो हमने कहा अस्थि काय नाम रख लिया ना उसका पूरा, तो क्या अस्तित्व का भी निषेध और कायत्व का भी निषेध। तो अस्तित्व के लिए द्रव्यक्षेत्र काल भाव चारों जरूरी हैं, तो एक प्रदेश का होना बहुत जरूरी है और कायत्व के लिए बहु प्रदेशों का होना जरूरी है। तो वास्तव में तो कायत्व का निषेध है, अस्थि का निषेध नहीं है, लेकिन शब्द का प्रयोग में अस्थि काय है, पंच अस्थि काय है ना। तो ये बात भी यहां आगे आने वाली है। देखो ऐसा होने पर भी मैंने आकाश को, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। एक प्रदेश में सब परमाणुओं को अवकाश देने की सामर्थ्य है तो उससे हमें अंश कल्पना करना पड़ेगी। यदि हम अंश कल्पना नहीं करेंगे तो पूरे ही आकाश को सबको जगह देनी पड़ेगी, तो हर चीज को पूरे आकाश में फैलना पड़ेगा। कि यदि हम एक प्रदेश को मानेंगे तो एक प्रदेश में तो हर एक को फैलना ही है, एक प्रदेश से कम जगह में तो कोई द्रव्य ठहर ही नहीं सकता, न पुद्गल का परमाणु न कालाणु, ये दोनों छोटे से छोटे होते हैं, कालाणु का भी एक प्रदेश ही और पुद्गल भी परमाणु एक प्रदेश ही और आत्मा तो असंख्य प्रदेश ही है। तो जब एक प्रदेश तो कम से कम जगह चाहिए ही चाहिए, कि आधे प्रदेश में नहीं ठहर जाएगा वो, क्योंकि इसमें ही तुम 25 को ठहरा दो, लेकिन मैं आधे में नहीं ठहर सकता, एक द्रव्य आधे में नहीं ठहर सकता, और एक ही प्रदेश में 25ों नहीं, ये तो कहते हैं सब, क्या लिखा था अभी अपन ने पढ़ा, शेष 5 द्रव्यों के प्रदेश सूक्ष्मता लिए अनंत पुद्गल के परमाणु, इन सब को वो अवकाश देने में समर्थ है। यहां के लिए अनुभव से सिद्ध है, वो हमें दिख रहे ना कि सब द्रव्य यहां है, मान लो हमें धर्म द्रव्य नहीं दिखते हैं, लेकिन आकाश में जो दिखते हैं तो ये तो दिखते कि हमारा आत्मा और ये पुद्गल के परमाणु ये सब हैं, इतने और इतने जो हिस्से हैं शरीर के, तो आकाश के जो प्रदेश हैं वो तो इसमें जो जितने असंख्य होंगे, मतलब असंख्य नहीं कहो संख्य कह लो इसे, इसलिए इसमें फिर वो असंख्य प्रदेशों वाला आत्मा वही अनंत पुद्गल परमाणु ठहरे हैं ना, तो मतलब एक को एक चाहिए ये तो नहीं रही ना बात, जो कह सब ठहर सकते हैं एक साथ, तो इतने में ही इतने पुद्गल परमाणु ठहरे हैं और सभी बाकी के द्रव्य भी हैं, और यहां कहीं कोई बाधा नजर नहीं आती। यदि ऐसा होने पर भी यदि कोई ऐसा कहे तो, ये न्याय की खास भाषा है, यदि एवं चेद एवं साध एवं चेद एवं साध, माने सामने अपन आजकल क्या हम प्रश्न लिखते हैं फिर उसका उत्तर लिखते हैं, आचार्य अपने आप ही इसी तरह प्रश्न उठा लेते हैं कि यदि कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर ये है, तो आकाश के अंश नहीं है, ऐसा कहे कोई कि आकाश के अंश नहीं हो सकते, तो आकाश में दो उंगलियां उठाकर हम पूछते हैं कि इन दो उंगलियों का क्षेत्र एक है या अनेक। कल अपन ने पढ़ा था, विस्तार चर्चा की थी कि आकाश तो एक ही है और उसके हम अंश नहीं माने, इसमें लिखा है यदि ऐसा माने कि आकाश के अंश नहीं है तो, प्रश्न समझ में आया, तो फिर एक ही आकाश में दो ही हैं तो एक ही में दो रहे ना, तो इन दोनों का स्थान अलग अलग नहीं हो सकता, और इन दोनों का स्थान अलग अलग है, इसलिए हम मानते हैं कि आकाश के अंश कल्पना आकाश में होती है, और नहीं माने तो تو پھر اتنے دو آکاش ماننے پڑیں گے. یعنی ایک آکاش میں ایسی انش کلپنا نہیں مانیں گے تو ہمیں ٹھہریں گے تو دونوں انگلیاں دونوں آکاش میں ہی, تو اس کا آکاش الگ ہوگا اس کا الگ, تو دو آکاش مانو, دو مانے انیک. اب جانتے ہیں ایک کے بعد اپن انیک بولتے ہیں, ایک کے ورودھ دو نہیں ہیں, ایک کے ورودھ انیک ہیں. انیک مانے واستو میں سنکھیا تو ایک ہی ہے, ایک سنکھیا ہے. پھر اپن بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں آپ کے گاؤں میں آپ کے پاس 50 ایک روپے ہوں گے, بولے 1000 ایک روپے ہوں گے. تو 1000 کیوں نہیں بولے, 1001 مانے کیا مانے, وہ ایک 1001 مانے مولتا تو ایک ہی ہے اکائی, تو دو ایک تو ان ایک کہ ایک اور ایک نہیں, ایک نہیں کیوں بول رہے اسے, دو کیوں نہیں بول رہے تین, کیونکہ ان ایک میں دو بھی ہیں تین بھی ہیں چار بھی ہیں پانچ بھی ہیں سنکھیات بھی ہیں اسنکھیات بھی ہیں انت بھی. اپنے انیک انت کی ویاخیا لکھی نا تو وہاں یہ بات بتائی ہے کہ انیک کے انیک ارتھ ہوتے ہیں, اور سب سے چھوٹا انیک ہے دو, اور سب سے بڑا انیک ہے انت انند, ہے نا. تو ان میں وہ تم ایک ہیں کہ انیک, کہاں پڑھ رہے تھے اپن, دو انگلیوں کو اٹھا کر چھو دیں ان کا چھیتر ایک ہے کہ انیک. یدی ایک ہے ایسا کہو گے کہ ایک چھیتر ہے دونوں کا, کیونکہ دونوں آکاش میں ہیں. تو پھر پرشن ہوتا ہے کہ آکاش ابھن انشوں والا ابھیواگ ایک درب ہے, ابھن انشوں والا ابھیواگ ایک درب ہے, یعنی انت انش ہیں اس کے, ان پردیش ہے نا انش مانے پردیش, اور ایسا ایک ایسا آکاش پکڑنا کہ وہ انت انشوں سے بھن ہے, ایسا جو آکاش ہے کیسا آکاش لینا. تم نے کہا کہ دونوں ایک ایک میں رہتا, یعنی ایک کہو ہے نا, ایسا کہو تو پرشن ہوتا کہ آکاش کے ابھن انشوں والا ابھیواگ آکاش, جن کا وبھاگ نہیں ہے ابھن انش ہیں, ایسے آکاش میں دو انگلیوں رکھ کر کے بات کر رہے کہ جو جس کے انش بھن بھن ہیں, ایسے آکاش کی بات کر رہے تم, کیسے آکاش کی بات کر رہے, کیونکہ بھن انش والا اور ابھن انش والا اس میں اپنا انیک انت ہے نا, کتھنچت لگاتے ہیں نا اپن, تو دو باتیں ہو گئیں. اس لیے ہوتا ہے آکاش ایسا کہو, یدی ایک ہے ایسا کہو گے ایک ہے, انیک انش والا نہیں ایک, ایک ہے ایسا کہو تو پرشن ہوتا ہے کہ آکاش ابھن انشوں والا ابھیواگ ایک درب ہے, اس لیے دو انگلیوں کا چھیتر ایک ہے, یا بھن انشوں والا ابھیواگ ایک درب ہے اس لیے دو انگلیوں کا چھیتر ایک ہے. یہ پرشن کھڑا کیا, یدی آکاش ابھن انش والا ابھیواگ ایک درب ہے تو اس لیے دو انگلیوں کا چھیتر ایک ہے, ایسا کہا جائے تو جو انش ایک انگلی کا چھیتر ہے وہی انش دوسری انگلی کا بھی چھیتر ہے, اس لیے دو میں سے ایک کا ابھاو ہو جائے گا. پھر دو دینے سے فائدہ کیا, جب اسی کو کہہ رہے ہو تو دو نہیں رہے ایک ہی رہا, تو تم کہہ تو رہے کہ بھی الگ الگ ہیں لیکن واستو میں وہ ایک ہی رہا. اس پرکار ایک سے ادھک دو انشوں والے کا ابھاو ہونے سے آکاش بھی پرمانو کے سمان پردیش ماتر سدھ ہوگا, جیسا پرمانو نشچے سے ایک پردیشی ہے ایسا آکاش بھی اکھنڈ روپ سے ایک پردیشی مانا جائے گا, اور وہ ایک پردیش اتنا بڑا ہوگا کہ جس میں لوکا اور الوک دونوں سما جائیں گے, کیونکہ پھر وہ یہ پریبھاشا پردیش کی نہیں رہ جائے گی, آکاش اتنا چھوٹا تو ہوگا نہیں, وہ تو جتنا ہے اتنا ہی ہے نا, تو ہم نے پردیش کی پریبھاشا تو بنا دی, تو ایک پرمانو جتنی جگہ کو گھیرے اس کو پردیش کہتے ہیں. اب وہ آکاش تو انشوں والا ہے لیکن وہ انش उसमें फिर अंश नहीं है, अंश में अंश कल्पना नहीं है। क्या अपने आप फिर उसमें अंश करें, फिर उस टुकड़े के टुकड़े करें, जैसे अपने कहते ना ये देश 30 प्रदेशों में बटा है, फिर एक एक प्रदेश 20-20 जिलों में बटा है, फिर एक एक जिला 20-20 तहसीलों में बटा है, फिर एक एक तहसील इतने परगनों में बटी है, फिर एक एक परगना इतने गांवों में बटा है, फिर एक एक गांव इतने मोहल्लों में बटा है, फिर एक एक मोहल्ला इतने घरों में बटा है, फिर एक एक घर इतने कमरों में बटा है, ऐसे भेद होते जाते हैं ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो वो देश के में बटे हैं, वे तो असली बंटवारा है, और बाकी के ये सब बंटवारे व्यवस्था के लिए हैं। क्या इतने बड़े देश की हमें व्यवस्था करनी है, संभालना है, किसी को एक जिम्मेवारी सौंपनी है, तो जितनी छोटे एरिए की सौंपेंगे उतना वो अच्छी तरह से कर पाएगा। नहीं, सारे देश को तो प्रधानमंत्री संभाल रहा है, लेकिन वो कहां कहां जा सकता है, वो उन गांवों के नाम ही नहीं जानेगा, जिंदगी उस एरिया में जाएगा ही नहीं। तो हम जिलों में बांटेंगे, गांवों में बांटेंगे, तो वहां एक एक ऑफिसर रखेंगे, कलेक्टर रखेंगे, तो वो सब संभालेगा। तो ये हमने अपनी व्यवस्था के लिए ये सारे बंटवारे किए। तो ऐसा ही यहां है क्या कि हमने एक द्रव्य को अंशों में बांटा। ये कौन से अंश की बात चल रही है? प्रदेश वाले, क्षेत्र वाले, अभी काल वाले भी आएंगे अभी थोड़ी देर में, क्षेत्र वाले अंश। तो कहते हैं वो अंश तो हैं उसके, पर अंशों के अंश नहीं है। यदि अंशों के अंश मानेंगे तो क्या होगा, बोलो? अब सोचो, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, पूछूंगा नहीं। मुझे इतना पता तो लगा, किसी की समझ में आया कि मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूं, आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जो आकाश प्रदेश है, आकाश जो एक द्रव्य है, उसका एक प्रदेश, फिर वो एक द्रव्य हो जाएगा यदि उसके भी अंश होंगे तो। अब उसमें रहेंगे अनंत परमाणु, तो अनंत परमाणु एक एक परमाणु के हिसाब से हिस्से करेंगे तो अनंत हिस्से हो जाएंगे, तो वे हिस्से नहीं हो सकते। वो बिना ही हिस्से हुए, माने उसी उतनी जगह में, उसी जगह में उससे कोई अलग हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उन अनंत परमाणुओं को रहना पड़ेगा। तिब्बत में परेशान करे चाइना उनको, तिब्बतियों को, और 1,00,000 तिब्बती भाग के हिन्दुस्तान में आ जाए, तो फिर हिन्दुस्तान में हम 1,00,000 तिब्बतियों के लिए ऐसी जगह बढ़ाएंगे, थोड़ी थोड़ा चौड़ा कर देंगे हिन्दुस्तान को, वो तो हो नहीं सकता। इसी हिन्दुस्तान में उन्हें समाना पड़ेगा कि नहीं है? तो वो कहते हैं कि वो अंश का अंश नहीं हो सकता, तो उस एक अंश में ही सबको रहना पड़ेगा, और ऐसी सामर्थ्य उनमें है। माने कोई वो जबरदस्ती की बात नहीं है कि भीड़ हो जाएगी बहुत, वस्तु के स्वभाव में ऐसा अंश है। इसमें मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते शायद अंतिम हिस्से में पहुंचा इसी अधिकार के, तो उसमें एक बहुत पंक्ति आई थी कि ये आत्मा द्रव्य की स्वरूप संपदा है, निकालो, अंत में आएगी। तो मुझे बहुत आनंद आया, अब अभी मेहनत नहीं करे, आ जाएगा अपने आप। लेकिन ये शब्द है कि ये इसकी स्वरूप संपदा है, ये कोई इसकी आफत नहीं है कि अनंत द्रव्यों को ठहराना पड़ रहा है, क्या करें, भीड़ तो बहुत हो गई है। ये माने स्वरूप संपदा है, माने ये इसका स्वरूप भी है और संपत्ति भी है। स्वरूप संपदा दूसरी जगह भी आई है प्रथम सार में, मैंने वहां अर्थ किया है इसका, तुम्हें याद है क्या मिल गया? नहीं मिली पंक्ति, कोई बात नहीं, स्वरूप संपदा है, मैंने दूसरा तो कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ा तो यही है, है ना। और एक इसके 44 गाथा के आगे नहीं पढ़ा। तो अब स्वरूप संपदा है माने ये इसका स्वरूप है, इसका अपना रूप है, ये किसी की थोपी हुई वस्तु नहीं है। माने ये जो हम बता रहे हैं ये किसी कर्म के उदय से नहीं हुई है, हमने बढ़िया पुण्य किया था इसलिए हमको ऐसी ताकत प्राप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये पड़ोसी के सहयोग से कैसा हो गया, हम व्यायाम करते हैं इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। माने ये हमारे स्वरूप में ही बात है, इसलिए फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, जो हमारे स्वरूप में बात होती है और उसमें ही कोई चीज हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर हमारे लिए ये विपत्ति नहीं है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा स्वरूप है और हमारी संपत्ति है। ये जो बताया जा रहा है हतेक द्रव्य का, वो उसका स्वरूप है और उसकी संपत्ति है। तो अभी जो एक बात आई कि ये चार चीजें होना चाहिए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये क्षेत्र की बात चल रही है, अभी काल की बात अभी करेंगे। क्षेत्र की बात में वो ये कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे, जो काल को अस्थिकाल नहीं मानेंगे, तो एक चीज खंडित हो जाएगी, और एक चीज खंडित हो जाने से वो वस्तु ही नहीं रहेगी। तो वस्तु तो है, वो वस्तु माने उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो बहु प्रदेश वाला अस्तित्व नहीं, अंश कल्पना वाला अस्तित्व नहीं। आकाश में तो अंश कल्पना होती है, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में भी अंश कल्पना होती है, एक जीव में भी अंश कल्पना होती है, लेकिन काल द्रव्य में अंश कल्पना नहीं होती। पर ये एक प्रदेश है तो उसमें और अंश कल्पना नहीं होती है। देखो क्या पूछ रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो कोशिश पूरी करूंगा। मिल गया, देखो प्रत्येक पेज नंबर 229 पर है, प्रत्येक द्रव्य के समान काल द्रव्य भी प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और द्रव्य का ध्रुवत्व, यह प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप संपदा है। इसलिए यह सुनिश्चित ही है कि एक समय में होने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्य द्रव्य में ही घटित होते हैं, एक पर्याय में नहीं। अब ये भी लंबा है, जब ये इसको अपन पढ़ेंगे तब इसका मैं विशेष अर्थ समझाऊंगा। ये ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने लिख दी, टीका लिख दी, अनुशीलन लिख दिया, उसके बाद में सारांश लिख दिया, और उसके बाद में रोजिना पढ़ता हूं ना, तो रोजिना कम से कम एक घंटा पढ़ता हूं इन दो तीन पेजों को ही। कैसे ही नहीं होता आता है, इसलिए तुम्हें कैसे आ जाएगा एक सेकंड में। लेकिन मैं तो अपनी व्यायाम करूंगा, क्योंकि मैंने गुरुदेव को देखा है कि वो पगड़ी छाप बैठे रहते थे 5-7 लोग, और गुरुदेव समयसार की गाथाओं की बारीकियों को अपने बताते रहते थे कि किसने क्या समझ में आया या नहीं। लेकिन जैसे अपने यहां पर एक नियम था ना कि कहानी किसी को सुनानी हो तो एक हुंकारा भरने वाला चाहिए था, वो हुंकारा भरने वाला नहीं हो तो कहानी वाला कहानी नहीं सुना सकता, क्योंकि 2-5 लोग बैठ जाते थे, लौट जाते, सो जाते, कुछ सो जाते, अब सब सोते रहे और वो कहानी सुनाता रहे, ऐसा नहीं। एक हुंकारा भरे, कैसे गुरुदेव के सामने एक हुंकारा भर बैठा रहता था, प्राण वचन गुरुदेव, प्रमाण वचन गुरुदेव, वो बीच बीच में ऐसा बोलता रहता था, और वो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। यदि आकाश अभिन्न अंश वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र है ऐसा कहा जाए, एक क्षेत्र है, तो जो अंश अंगुली का क्षेत्र है
वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र हो गया, इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो जाए। तो दो की क्या जरूरत, एक ही है ना, तो उसे दो क्यों बोलते हो, है ना? उस एक कमरे के एक कोने में एक सो रहा, दूसरे कोने में दूसरा सो रहा, तो हम उसे दो कमरे कह सकते हैं? एक ही कमरा कहना पड़ेगा ना। इस प्रकार एक से अधिक दो आदि अंशों का अभाव होने से आकाश भी परमाणु के समान प्रदेश मात्र सिद्ध होगा, बस वो भी एक प्रदेश ही मानना पड़ेगा। अतः यह तो ठीक नहीं है। अब यदि यह कहा जाए कि आकाश भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, अंश उसके अलग अलग हैं और वो अविभागी एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगुलियों का एक क्षेत्र है, तो यह ठीक ही है, क्योंकि अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना सिद्ध हो जाती है। क्योंकि उन्हें सिद्ध तो यही करना था कि एक अविभागी द्रव्य में अंश की कल्पना की जाती थी। यदि तुमने ये मान लिया कि उनके अलग अलग अंश हैं, तो हमारी बात सिद्ध हो गई, अंश कल्पना। ये कह रहे कि आकाश एक द्रव्य है और उसके अनंत अंश माने जा सकते हैं, और एक अंश एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उतनी जगह माना जाता है, अंश वाला है। यदि ऐसा कहा जाए कि दो उंगलियों का क्षेत्र अनेक है, अब एक वाला तो खत्म हो गया, अनेक है, एक से अधिक हैं, तो प्रश्न होता है कि आकाश द्रव्य खंड खंड रूप सविभाग अनेक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र अनेक है, माने आकाश ही अनेक आकाश हैं, इसलिए अलग है कि आकाश तो एक ही है, अविभागी द्रव्य होने पर दो उंगलियों का क्षेत्र अनेक है। यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होने से उंगलियों का क्षेत्र अनेक है ऐसा माना जाए तो आकाश द्रव्य अनंत हो जाएंगे, या तो आकाश अनंत हो जाएंगे और या फिर उसके हिस्से नहीं माने जा सकते हैं। पर यह तो ठीक नहीं है। अतः आकाश अविभाग एक द्रव्य होने से दो उंगलियों का एक क्षेत्र है ऐसा माना जाए तो यह ठीक ही है। इस प्रकार अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हो गई। ये अंतिम का निकालना तो ये है, एक द्रव्य में अंश कल्पना हो सकती है। आकाश में अनंत अंश हैं, अंश माने प्रदेश हैं, और ये बात गलत नहीं है, इसको ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं है, इस बात तो इतनी है। अब आपकी समझ में इतना आ जाए कि आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं और उसमें कोई शंका खड़ी नहीं हो, तो समझ लेना उसका अर्थ समझ में आ गया। ये सब युक्तियों ने तर्क युक्तियों से इस बात को सिद्ध किया है। अभी हम जयसेनाचार्य ने फिर दो मुनि खड़े कर दिए, इनने तो दो अंगुलियां खड़ी करी थी, दो मुनिराज खड़े हैं, तो उनका क्षेत्र अलग अलग है कि इकट्ठा ही है। मतलब ऐसे अलग अलग उदाहरणों से हम इसे घटित करके देखें तो हमारे दिमाग में वो बात अच्छी तरह खचित हो जाएगी। अब 41वीं गाथा अपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी, तो पढ़ो फिर। अब सच्ची गाथा है, एक दो और फिर संख्यात। संख्यात के लिए मैं बहुत शब्द का प्रयोग किया और फिर असंख्य को अलग लिया और अनंत को अलग लिया। यदि बहुत कहा था तो असंख्य अनंत भी आ जाते उसमें, संख्यात असंख्यात और अनंत, लेकिन उन्होंने असंख्य अनंत को अलग कह दिया तो समझ लो बहुत संख्यात के अर्थ में किया है ना। एक दो तीन चार पांच छह लगाते जाओ, ये सब जितने हैं कहाँ पढ़ रहे हैं, द्रव्यों के एक दो बहुत असंख्य और अनंत प्रदेश होते हैं और काल के अनंत समय होते। अब क्या क्या मतलब काल के प्रदेश नहीं होते, वो तो अप्रदेश ही है ना। वो जो मेहनत करेंगे अभी के वो एक प्रदेशी के अप्रदेशी वो एक अलग है, अभी तो अपन ने उसे अप्रदेशी मान लिया ना, तो फिर कहते हैं उसमें अंश कल्पना कैसे करेंगे। एक द्रव्य में अंश कल्पना करनी है। अब काल इन्हें बाकी के पांच द्रव्य तो बहुप्रदेशी हैं, इसलिए उनमें अंश कल्पना हो गई। आकाश में अनंत हो गए, धर्म द्रव्य में असंख्य हो गए, अधर्म द्रव्य में असंख्य हो गए, एक जीव में असंख्य हो गए, ऐसा ये तो प्रदेश की हो गई। अब काल द्रव्य में प्रदेश नहीं है तो उसमें भी अंश कल्पना करनी है, तो कहते उसमें हम समय से अंश कल्पना करेंगे। उसका सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश है क्षेत्र की अपेक्षा, और काल की अपेक्षा सबसे छोटा हिस्सा समय है। और बाकी के जो पांच द्रव्य हैं उनमें भी काल से भी हमें अंश कल्पना होती है, लेकिन फर्क इसलिए नहीं है कि सभी द्रव्यों की जैसे ये फर्क है ना प्रदेशों में, आकाश के अनंत धर्म द्रव्य के असंख्य इसके असंख्य, ऐसा भेद नहीं है। उस काल में तो सबके ही अनंत है, समझे, छह द्रव्यों के। अभी इसमें थोड़ा बारीक भेद डाला है कि काल के समय तो काल के हैं और उनको एक विशेषण लगा करके फिर बाकी के बनाया है। देखे ना क्या है विशेषण, वो अनंत प्रदेशी होने से धर्म अधर्म द्रव्य अवस्थित प्रोजेक्ट पर चाहे अभी आ जाएगा। इसमें वो समय विशिष्ट ऐसा शब्द लगा दिया है, विशिष्ट शब्द लगा दिया है, उसके तो अंश जो है वो समय, और बाकी में जो समय की अपेक्षा भेद किए तो समय विशिष्ट ऐसा लगाया है। वो क्या क्यों लगाया है, क्या लगाया है, ये अपन बात करते हैं। देखो ये त्रेक प्रचय और ऊद प्रचय, त्रेक सामान्य ऊद सामान्य, और तीसरा नाम और एक है और है इसका, इसमें दिया है। तो ये बता रहे हैं कि काल को जब हम बांटते हैं तो प्रदेशों के समूह को त्रियक प्रचय कहते हैं। तो इस प्रचय समझते क्या होता है, ये जो दीवार बनाते हैं ना कारीगर, तो ईंटों का एक वो लगाते हैं ऐसी एक प्रकार, एक एक ईंट लगाई फिर एक ऊपर, तो उसको एक को एक चय बोलते हैं, संस्कार को चय बोलते हैं। चले उन्होंने एक ईंट ऐसी पूरी में लगा दी, फिर ऊपर से दूसरी ईंट लगाई, तो एक एक चय चय अपचय चय अपचय ऐसा कर जाते हैं। तो ये इसमें क्या प्रचय शब्द है ना, कहा प्रचय, तो विशेष प्रकार का चय, त्रियक प्रचय, तो माने त्रियक माने तिरछा, तिरछा माने आड़ा, आड़ा माने ऐसा फैलाव वाला चौड़ा, ऐसे फैलाव को त्रियक प्रचय बोलते हैं। ये जो गाय भैंस को क्या बोलते हैं, त्रियंच गति, त्रियंच क्या है, ये इनका मध्य लोक भी त्रियक तिरछा है, ऊर्ध लोक ऐसा है, सुरक के ऊपर सुरक, सुरक के ऊपर सुरक, ऐसा ऊपर ऊपर है, नरक ऐसे है एक के नीचे एक, एक के नीचे, लेकिन मध्य लोक में एक के बगल में दूसरा, एक के बगल में दूसरा, ऐसे एक के नीचे दूसरा ऐसा नहीं है। उसका जो फैलाव है वो बंबई जैसी बिल्डिंगें नहीं है, वो नीचे से ऊपर चली है। अब यहां नरक बनते जा रहे हैं, बना तो रहे स्वर्ग, स्वर्गों में भी ऐसा ही है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो बना तो रहे स्वर्ग, बनते जा रहे हैं नरक। जो ऐसी बस्ती बस्ती है ना आड़ी आड़ी, तो उसको त्रियग लोग बोलते हैं, लोग को ही पूरे मध्य लोग को त्रियग लोग बोलते हैं। ترینچوں کا لوگ ہے. اور وہ تو ایسا بولتے تھے سنجن بھائی کہ اپنا آدمی کھڑا ہوتا ہے نا لیکن پشو سب ترچھے ہوتے ہیں, ہاتھی گھوڑا سب چار پیر ہوتے ہیں نا ایسے ترچھے ہوتے ہیں, اس لیے انہیں ترنج گتی بولتے ہیں. اگر سب ترسے ہی ترسے ہوں گے ایسے کھڑے آدمی جیسے کوئی ایک بھی پشو پکشی آپ کو دیکھنے میں نہیں آتے. تو پرچے وہ آپ سمجھ گئے نا, وہ لگتے ایک کے اوپر ایک لگتا جاتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے تریگ پرچے اور ایک کون دوسرا ارد پرچے. تو یہ اونچے اونچے جاتے ہیں یہ ارد پرچے بولتے ہیں, آرا ہوتا ہے تریگ پرچے بولتے ہیں. اب یہاں پردیشوں کی اپیکشا لگاؤ تو تریگ پرچے اور کال کے سمیوں کی اپیکشا لگاؤ تو ارد پرچے. انادی سے لے کے انت کال تک یہ ارد پرچے ہے. اور سارے لوک میں اپن کہیں گے نرک سے لے کے سورگ تک اور جو بھی کہنا ہو, جیسے اپن ہندوستان کا بولتے ہیں کاشمیر سے لے کے کنیا کماری تک, یہ سب تریگ پرچے ہے. پردیشوں کا سموہ تریگ پرچے ہے اور سمے وششٹ پریاوں کا سموہ ارد پرچے ہے. یعنی وہ سمے وششٹ پریاوں کا سموہ. تو یہ جو وششٹ شبد لگا ہے نا وہ کال درب میں نہیں لگانا اور باقی سب میں لگانا. اس کا کارن ہے کہ کال کی پریائے تو پریائے ہے, کال کا وہ جو ہے نا انش وہ تو پریائے ہی ہے, لیکن پرتیک درب کا انش پریائے نہیں ہے. کوئی وششٹ پریائے ہے جیسے منش پریائے دیو پریائے, کال میں ایسی کوئی پریائے کا ایسا بھید نہیں ہے, وہ سب انادی سے یعنی تک ایک ہی پریائے پریائے پریائے. اور اس میں ہم کہیں گے منش سے دے پریا فلانی سے یہ پریائے, مانے وششٹ پریائے وشیش پریائے پکڑنا, سمجھ گئے نا. اڑتا سامان میں سمے وششٹ پریاؤں کا سموہ اڑ پرچے ہے. آکاش درب اوستھت انت پردیشی ہونے سے دھرم و دھرم درب اوستھت اسنگ پردیشی ہونے سے جیو انوستھت اسنگ پردیشی ہونے سے. اب یہ کیا ہو گیا, بے اوستھت اور جے انوستھت. تب تو اسود پڑھ رہے نا آج کل, سنا آیا ہے نا, یہ نکتی ہے. آکاش کے انت پردیش نکتی ہیں, آکار پرکار سب نکتی ہے, دھرم درب کا بھی ادھرم درب کا بھی. اور جیب کا نکی نہیں, موٹا ہو جاتا دبلا ہو جاتا اتنے میں ہو جاتا اتنے میں پھیل جاتا, اس لیے اس کو بولتے انوستھت. سمجھے اوستھت اور انوستھت کا انتر سمجھ میں آ گیا. اوپر ڈالا اوستھت نیچے لکھا انوستھت. اسنگ پردیشی ہونے سے تریاگ پرچے والے درب ہیں, یدپی درب درشٹی سے ادگل درب انیک پردیشی ہونے روپ شکتی سے سمپن ایک پردیش والا ہے. ایک پردیش ہے تو ایک ہی پردیشی پدگل درب پرمانو پدگل درب ہے, لیکن اس میں اسکندھ مننے کی شکتی ہے, مانے اس میں روکچھت اور سنگھتا گن ہے جس سے بھی دوسرے پدگل پرمانوں کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے نا. اس لیے اسے اپچار سے بہو پردیشی بھی ہم نے مان لیا. دیکھو راجستھان بھی ایک اپنا دیش کا انش ہے, مدھیہ پردیش بھی ہے, اور دلی میں کیندر میں راجدھانی ہے. تو کیندر کی جو راج ہندوستان ہے بھارت ہے, بھارت کو اڑوسی پڑوسیوں سے اور امریکہ سے بھی سمجھوتا کرنے کا ادھیکار ہے, لیکن راجستھان کو نہیں ہے, مدھیہ پردیش کو نہیں ہے کہ ان سے وہ کوئی سمجھوتا کر لیں. اس کا مطلب یہ وہ دیش نہیں ہے, راجستھان دیش نہیں ہے. دیش دیش ہوتا تو اس کو وہ شکتی ہوتی, سمجھ گئے. تو یہ کہاں چل رہا ہے, پریائے درشٹی سے سنکھیات اسنکھیات انت پردیش والا ہے, اس لیے اس کے بھی تریگ پرچے ہے, پرنتو کال درب کے تریگ پرچے نہیں ہے. اب یہ کئی پردیش ہے نا, آپ پردیش کا ہوتا ہے ایک ہی پردیش تو پھیلے کیا, وہ ترچھا جیسا کیسے پھیلے, چھیتر سے نہیں پھیل سکتا نا وہ, اسے تو آکاش کے ایک ہی پردیش میں ایک کالانو رتنوں کی راشی کی وہاں جڑا ہے. اور وہ انوستھت ہے کہ اوستھت, اوستھت ہے بس وہاں جڑا سے جڑا, नानादिकाल से लेके अनंतकाल तक जिस आकाश के प्रदेश में जो कालाणु द्रव्य बैठा है तो बस बैठा है, बस रहना, क्योंकि वह शक्ति और व्यक्ति दोनों से ही एक प्रदेश वाला ही है। माने उसकी जो पर्याय हो तो भी और द्रव्य हो तो भी वो अपने एक प्रदेश में से उसी प्रदेश में रहेगा। ऊर्ज प्रत्यय तो सभी द्रव्यों के अनिवार्य रूप से होता ही है। अब ऊर्ज प्रत्यय क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है तो बताओ, जो ऊर्ज प्रत्यय क्या है अभी हाल बताया है, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। ऊर्ज प्रत्यय पर्यायों की अपेक्षा अनादि से लेकर अनंत काल तक है, उसको ऊर्ज प्रत्यय बोलते हैं, वो समयों की अपेक्षा। तो ऊर्ज प्रत्यय तो सभी द्रव्यों में अनिवार्य रूप से होता है। पर्याय प्रत्यय कितने द्रव्यों में होता है? पांच में, एक में नहीं होता है। किसमें? काल में। और ऊर्ज प्रत्यय छह द्रव्यों में होता है, इसलिए अंशों से युक्त है, इसलिए छह द्रव्यों में अंश कल्पना होगी, समझिए ना। छह द्रव्यों में इनको ये सिद्ध करना है कि द्रव्य अखंड है और उसमें अंश कल्पना हो सकती है, और अंश कल्पना हो गई तो अलग अलग हमने कहे तो उनको प्रदेश एक हैं, इसलिए वे अलग अलग हो नहीं सकते। अलग समझे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं, फिर अलग हो नहीं सकते। ये दो अलग हो सकते हैं जिनके प्रदेश अलग हैं। इतना विशेष है कि समयों का प्रचय माने समूह है ना, काल द्रव्य का ऊर्ध प्रचय है और शेष द्रव्यों का समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय, ये समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय ऊर्ध प्रचय है, क्योंकि काल द्रव्य की वृत्ति स्वतः समय भूत है और अन्य द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतर भूत होने से समय विशिष्ट है, और काल द्रव्य की वृत्ति तो स्वतः समय भूत होने से समय विशिष्ट नहीं है। अभी आया को समझ, थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए बताता हूं। जैसे अपन कहते हैं ना राग पर्याय है ना, और दृष्टि के विषय में राग नहीं है, राग पर्याय को अपन ने बिल्कुल निकाल दिया। तो राग पर्याय नहीं, विशिष्ट पर्याय है। सम्मा दर्शन केवल ज्ञान ही विशिष्ट पर्याय है। तो जब पर्याय निकाल दी हमने, राग भी निकाल दी, मिथ्यात्व भी निकाल दिया, सन्नत भी निकाल दिया, केवल ज्ञान भी निकाल दिया, निर्मल पर्याय भी निकाल दिया, तो द्रव्य पर्याय रहित हो गया। अब जरा माथा मारा, आप लोग शांति से बैठो। क्या ये विशिष्ट पर्याय का निषेध है? वो जो द्रव्यगुण पर्याय में जो पर्याय है, वस्तु का स्वभाव वो तो है ही, वो तो कहां से निकल जाएगी? प्रति समय बदलने का जो उसका स्वभाव है वो ये पर्याय है ना, जो काल द्रव्य की है, काल द्रव्य नहीं है। और हमारी जो विशिष्ट पर्यायों का निषेध है, वास्तव में वो पर्याय तो है, ऐसा कोई भेद ही नहीं जानता है, क्या करे। पर्याय का निषेध केवल ज्ञान का भी, इसका भी निषेध। अब कौन पर्याय बाकी है बताओ, ऐसा बोलते ना अजित भाई, बोलो। अरे पूरी पर्याय बाकी हैं, ये राग देश मोह मिथ्या तो ये सब छोड़ दो, तो द्रव्यगुण पर्याय तीनों हैं कि नहीं, इसमें सिद्ध करेंगे। अभी पर्याय वो तो प्रति समय होते ही है, नहीं तो वो काल खंडित हो जाएगा। जैसे प्रदेश खंडित हो जाता है ना, जैसे काल खंडित हो जाएगा, वो समय तो मौजूद ही है, और उसमें भी अंश कल्पना है ना, क्योंकि अनंत समय होते हम ऐसा कहते ना। यदि अंश कल्पना नहीं करेंगे तो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक एक ही समय मानना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। ये भूत में चला गया, ये वर्तमान में आ गया, तो भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में जाता है ना। अब ये कहते हैं कि एक समय में उत्पाद व और ध्रुव तीनों होते हैं, इसमें भी माथा मारेंगे। वो कहते हैं कि एक समय की पर्याय में तीनों नहीं होते। तो सुनो हमारी बात याद रखना, वो द्रव्य में होते हैं। और तर्क क्या दिया कि एक समय की पर्याय
तो बिल्कुल सेपरेट है। तो जो द्रव्य है उसमें तो पूर्व पर्याय भी थी और उत्तर पर्याय भी होगी, तो व्यय पूर्व पर्याय की अपेक्षा होगा और उत्पाद वर्तमान पर्याय की अपेक्षा होगा। और जो पर्याय है वो तो एक ही समय की है, तो उसमें व्यय घटित नहीं होता। व्यय किसका? इसलिए द्रव्य में उत्पाद व्यय धूम। अब कहें इसमें द्रव्य में तो एक समय की, अब एक कहते हैं उस द्रव्य में एक समय में तीनों घटित हो रहा है। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इस समय जो द्रव्य है इसमें पूर्व पर्याय के अपेक्षा व्यय, पूर्व पर्याय का व्यय नहीं, पूर्व पर्याय की अपेक्षा इसमें व्यय नाम का धर्म है और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा इसमें उत्पाद नाम का धर्म है और भव धर्म तो है ही। तो तब इसलिए तीनों चीजें इनसे युक्त द्रव्य उत्पाद व ध्रोव युक्तम द्रव्य, उत्पाद व ध्रोव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणों, तब वो द्रव्य कहलाएगा। इसलिए द्रव्य में है वो, द्रव्य में एक समय में तीनों घटित होती हैं, पर्याय में नहीं। अभी अपने आंखों में ये आदत पड़ गई है, ये तो पर्याय में, ये तो पर्याय की तरह, पर्याय के नहीं है भाई साहब। द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से नित्य है और पर्यार्थिक नय से अनित्य है, पर्याय नहीं है पर्यार्थिक नय से अनित्य। पर्याय तो प्रमाण से अनित्य है, वो तो है ही अनित्य। वो तो द्रव्य जो है वो पर्याय की जिस तरफ से देखो तो अनित्य है और द्रव्य की तरफ से देखो तो नित्य है। जिस द्रव्य की तरफ से देखना है वो द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य है, जिसे देखना है वो प्रमाण का द्रव्य है। समझ रहे ना? इसलिए सब ये वस्तु पे घटित होते हैं। हम कहते पर्याय पे घटा दिया, पर्याय पे घटा दिया, पर्याय पे घटित नहीं होते वस्तु पे। ये चार अभाव है ना, तो इसमें वर्तमान में, तो वर्तमान उस वस्तु में, ये जो स्वरूप है ये वस्तु स्वरूप है और वस्तु माने द्रव्य, और फिर जो पर्याय ये वस्तु का अंश है, गुण ये वस्तु के अंश हैं, प्रदेश ये वस्तु के अंश हैं, और ये अंश कल्पना भी सिद्ध कर रहे हैं। अब इसे तुम पढ़ लेना कल की मेहनत करके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। Yeah.